भगवान कृष्ण अंत अंत में कहते हैं, ग्यारह सब 18 अध्याय, 18वें अध्याय के आखिर में हम पाते हैं, उनका संदेश पाते हैं। क्या संदेश है? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया। और फिर उसके बाद वे कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। और फिर सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। अद्भुत है भक्ति का पथ। ये जो तीन श्लोक हैं, मानो भक्ति की चरम अवस्था का निदर्शन हमारे समक्ष करते हैं। क्या कहा? प्रभु कहते हैं, पहला श्लोक जो हमने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया। अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में है और वे जैसे यंत्र को कोई बीच में रह करके घुमाता है, उसी प्रकार वे हमारे भीतर में रह करके घुमा रहे हैं, इसकी प्रतीति हमें होनी चाहिए। तो कोई कह सकता है कि मैं बुरा करता हूं, फिर वह भी तो भगवान ही करा रहे हैं। एक तत्व की दृष्टि से यह बात कही जा सकती है, व्यवहार की दृष्टि से यह गलत है। वही तो दुर्योधन ने कहा था ना, कि दुर्योधन से पूछा गया, क्या तुम धर्म को नहीं जानते जो तुम अधर्म का आचरण करते हो? दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया था? जानामि धर्मम नच मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदिष्ठितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। कि मैं धर्म को तो जानता हूं, पर मेरा मन धर्म की तरफ नहीं जाता। अधर्म को जानता हूं, पर मेरा मन अधर्म से दूर नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि कोई देवता मेरे भीतर में बैठा है और वह जैसा कराता है मैं करता हूं। यह तो दुर्योधन ने भी कहा। तो हम भी गलत काम करें और यह तर्क तो दे सकते हैं कि मैं थोड़े ही कर रहा हूं, भीतर में कोई है वही मुझे कराता रहता है। श्री रामकृष्ण एक उदाहरण देते हैं, यहां पर भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। एक किसी व्यक्ति ने रिटायरमेंट ले लिया आर्मी से, उसको बागवानी का बड़ा शौक था, सुंदर बगीचा उसने बनाया, बहुत सुंदर बगीचा, लोग देख करके बड़ी तारीफ करते थे। एक दिन कहीं बाहर से वह आया, देखा कि फाटक खुला हुआ है। अरे किसने फाटक खोल दिया? कहीं कोई पशु तो नहीं आ गया, जानवर तो नहीं आ गया? अंदर दौड़ करके जाता है, देखता है एक गाय भीतर घुस आई है, सारे पौधों को चर डाला है। उसे इतना गुस्सा आया, लाठी लेकर के जो उसने दो तीन हाथ मारे कि वह तो बेदम होकर के गाय गिर पड़ी। थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब क्या करें? जब गाय को उसने मार ही डाला तो गो हत्या का पाप आता है, भयंकर रूप लेकर के, काले काले शरीर का, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों वाला और मोटा सोटा लेकर के आ रहा है एक व्यक्ति। इसने पूछा, कौन? कहा, मैं गो हत्या का पाप, तुमने गाय को मारा है। अब उसने कहीं पर सुन लिया था प्रवचन में कि हर एक इंद्रिय के एक देवता होते हैं, आंखों का देवता है सूर्य, तो सूर्य की शक्ति से आंखें देखती हैं, इसी प्रकार कान का देवता है, हाथ का देवता है, तो हाथ का देवता है इंद्र। तो उसने कहा कि हाथ ने लाठी चलाई इसलिए वो गाय मरी है, तो इंद्र ने शक्ति ना दी होती तो हाथ लाठी कैसे चलाता? तो उसने कहा, मैंने तो नहीं मारी, तुमने नहीं मारी, तो फिर गाय किसने मारी? कहा कि वह तो गाय इंद्र ने मारी। कैसे इंद्र ने मारी? कहा कि इंद्र मेरे हाथ का देवता है, उसने शक्ति दी इसलिए हाथ चला, इसलिए लाठी चली और इसलिए गाय मरी। अब वह गो हत्या का पाप तो उधर चला गया। अब इसने उस गाय को खींच करके गाय के मृत शरीर को उधर जिधर कचरा था ले जाकर के उसमें दबा दिया, कचरा ढक दिया ताकि कोई देख ना पाए। और गो हत्या ने जाकर के इंद्र से कहा, महाराज मैं आपके सिर पर सवार होऊंगा। मैंने कब गाय की हत्या की? तो मेरे सिर पर क्यों आकर के सवार हो गए? उसने सारी बात बता दी। अच्छा अच्छा चलो फैसला हो जाएगा। इंद्र ने ब्राह्मण का रूप लिया, आए उस बगीचे में और वह व्यक्ति दूर था माली, यहां देख करके तारीफ करनी शुरू की ताकि वह सुन सके, आह क्या सुंदर पौधा है, कितना सुंदर फूल है, वाह भाई वाह। तारीफ सुन करके एकदम आया, अरे आइए आइए आप इधर आइए ब्राह्मण देवता, इधर कितने सुंदर मैंने लगा करके रखे हैं। अच्छा ये किसने लगाया? कहा मैंने लगाया। अच्छा तुमने लगाया, तो तुमने क्या पैर से लगाया? पैर से क्या बात करते हैं, अरे पैर से कोई लगाता है, हाथ से लगाया। अच्छा तुमने अपने हाथों से लगाया, अच्छा यह भी तुमने अपने हाथों से लगाया। लगा ये ब्राह्मण देवता कैसा है कि हाथों से ही तो लगाते हैं। हाँ यह भी मैंने लगाया, यह भी मैंने लगाया। अब इंद्र जो ब्राह्मण के रूप में है धीरे धीरे उधर जाते हैं, जरा अच्छा उधर का भी तो देखाएं, जिधर कचरा पड़ा है, गाय का वह मृत शरीर पड़ा है, तो उधर क्या देखने का है ब्राह्मण देवता, इधर। अरे नहीं, जरा उधर भी देखें। और आए, अब उसका दिल तो दहलने लगा, और ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए इंद्र ने कचरे के पास जाकर के उस लाठी से धीरे धीरे यूं कचरा हटाना शुरू किया, और गाय दिखाई। अरे गाय, ये कहां से गाय आ गई, ये कैसे हो गया। अब तब माली का मुंह देखो तो ऐसा, और कहा वाह, जब यह जो बढ़िया बढ़िया फूल लगाए तो तुमने लगाया, और गाय जो मर गई तो मैंने मारी, वाह रे वाह, पाप तो तुम पर। तो यह है, तो यहां पर जो भाव है इसका कि जो हम अच्छे काम करते हैं मैं करता हूं, और बुरा काम करते भगवान कोई बैठा है अंदर में देवता, वह तो चलाता रहता है ना। देखो गीता में कहा है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय शिर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यह जो हम कहते हैं तो यह गलत तर्क है। तात्विक दृष्टि, जहां पर सब कुछ हमने समर्पित कर दिया, जहां पर पत्ते के हिलने में भी हम भगवान का ही इशारा देखते हैं, वहां पर यह सब बातें सही है। पर जब तक हम वह नहीं देखते, जब तक हम में कर्तृत्व का भाव बना हुआ है, तब तक जो बुरा हम करते हैं तो हम ही करते हैं, उसका फल हम ही को भोगना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, और फिर तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। और फिर कहते हैं कि उसके बाद वह परम स्थान को प्राप्त कर लेगा, और अंत में क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। यह एक छठा मानो जिसको कहेंगे योग, यह क्या योग है, समर्पण योग। माने भक्ति योग के दो रूप हो गए, एक अवतार योग और दूसरा समर्पण योग। यहां पर सब कुछ समर्पित करने की बात कही भगवान ने, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक क्यों करता है, पर शर्त क्या है, कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो सारे धर्मों को मेरी शरण में डाल दे, सब धर्मों को तू मुझे दे दे। माने इसका मतलब क्या है, मैं सब धर्मों का परित्याग कर दूं, भगवान को सौंप दूं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि यदि मैं अपना सारा कर्तृत्व, धर्म कहां से निकलता है, कर्तृत्व से निकलता है, तो यदि मैं अपना सारा कर्तृत्व भगवान को सौंप देता हूं और उनकी शरण में चला जाता हूं, तो भगवान मेरी व्यवस्था करते हैं। एक छोटा सा शिशु मां की शरण में जाता है कैसे, मां एक शिशु की व्यवस्था कैसे करती है, क्योंकि बच्चे ने सब कुछ मां को समर्पित कर दिया है। मां जानती है कि यह छोटा सा बच्चा मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे बिना उठना नहीं, मेरे बिना खाना नहीं खा सकता। उस बच्चे ने दिखा दिया है, उसके भीतर की जो वृत्ति है, उस वृत्ति ने मां को अपने अधिकार में जकड़ लिया है। इसको हम कहते हैं समर्पण योग, या इसी को गोस्वामी जी दैन्य योग कहा। वे तो कहते हैं, आप रामचरितमानस में पढ़ते हैं, एक चौथा घाट उन्होंने अपने लिए बनाया, एक ज्ञान का घाट, दूसरा भक्ति का घाट, और तीसरा कर्म का घाट, और चौथा वे कहते हैं यह दैन्य का घाट है, यह मेरा अपना घाट है। किसी संशयी ने पूछा, तुलसी जी आपने अपने लिए एक अलग घाट बना लिया, क्यों, ये तो तीन राजमार्ग हैं, ज्ञान का पथ है, भक्ति का पथ है, कर्म का पथ है, आप तो इन तीनों पथों में से किसी से जा सकते थे, आपने अपने लिए एक चौथा रास्ता बना लिया, क्या बात है। कहा भाई मैं भी तो जाना चाहता था इन्हीं तीनों रास्तों में से किसी से, पर लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। क्या मतलब, देखो भैया तुम तो देखते हो मेरे हाथ में यह काठ की माला है, मैं तुलसी की माला जपता रहता हूं, तो यह तो मेरी आदत हो गई है। मैं गया कर्म के घाट में, वहां पर मीमांसक लोग जो तर्क कर रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जाकर के खड़ा हो गया, सुनने लगा उनके तर्कों को। एक ने मेरी तरफ देखा, क्यों जी क्या चाहते हो। कहा मैं भी कर्म के घाट का सदस्य होना चाहता हूं, आप मुझे सदस्यता देंगे। उसने मुझे सिर से चोटी तक देखा, पैर से चोटी तक देखा,
और कहा, काठ की माला जपने वाला आज्ञा कर्म के घाट का सदस्य बनने भग यहां से, किसने तुझे यहां भेज दिया?
उसने डांट करके मुझे भगा दिया।
अच्छा फिर क्या किया?
अरे भाई, फिर मैं ज्ञान के घाट पर गया। वहां पर अवच्छिन्न अवच्छेद घट पट यह जो तर्क चल रहा था बड़ा सुंदर लगा, तो मैं मुग्ध होकर के सुन रहा था, पर माला भी चल रही थी और प्रभु का स्मरण हो आया तो नेत्र छलक भी आए थे। तो इतने में एक ने पूछा, क्यों जी क्या यहां पर देख रहे हो? कहा कि मैं आप लोगों के तर्कों से बहुत प्रभावित हूं, आप मुझे ज्ञानघाट का सदस्य बना सकते हैं?
रोने वाला ज्ञानघाट का सदस्य बनने चला, किसने तुझे यहां ला करके खड़ा कर दिया?
भग यहां से।
भैया मुझे भगा दिया तो मैं वहां से भी चला आया।
तो तुलसी जी, आप भक्ति के घाट में तो जा सकते थे, वह तो आपके ही लायक घाट था, तो क्या वहां से भी आपको भगा दिया गया?
कहा नहीं भाई, भगाया तो नहीं, मैं गया भक्ति के घाट पर और वहां जाकर के क्या मैं देखता हूं, एक से एक भक्त पछाड़ खा करके गिर रहा है और भक्ति में व्याकुल होकर के कहता है, प्रभु तूने दर्शन नहीं दिए। उनकी भक्ति की व्याकुलता देख करके मैंने अपने आप से कहा, अरे तुलसी, तेरी भक्ति तो इनकी भक्ति के पासंग में नहीं बैठती, तेरी व्याकुलता तो इनकी व्याकुलता की तुलना में तुच्छ है। तो भैया मैंने ही अपने को भक्ति के लायक नहीं माना, मैं स्वयं चला आया, मुझे भगाया नहीं।
अच्छा तो भगाया नहीं तो फिर क्या प्रभु मिले?
हाँ मिले।
फिर कैसे मिले?
यह दीनता का घाट मैंने चुना, कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन तुलसी त्रिपथ बिहाई गो राम द्वारे दीन। यह दीनता का घाट है और प्रभु दीनता के घाट में मिले, यह समर्पण का घाट। गीता में जिसे समर्पण कहा गया है, जहां पर कहा गया है सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वह मानो दीनता का घाट। तो दीनता के घाट की विशेषता क्या है तुलसी जी?
विशेषता
देखो यह है, बताता हूं तुमको, कि जैसे तुम एक गाड़ी में बैठ करके जा रहे हो और अचानक तुम्हारे कानों में आवाज आई, ओ बाबूजी मैं 3 दिन का भूखा हूं, कुछ खाने की चीज हो तो दे दो, मैं पैसा नहीं चाहता, तुम क्या करोगे?
तो मैं गाड़ी रोक लूंगा तुलसी जी,
कहूंगा अरे सुनो भाई, मांगने वाले लो आ जाओ, यहां पर खाने की चीज है।
अच्छा तुमने तो उसको पुकारा,
तो तुम्हारी बात सुनकर के वह कहता है, ओ बाबूजी मेरी तो आंखें नहीं है, मैं तो देख नहीं पाऊंगा। तो फिर तुम क्या करोगे?
अरे कहूंगा तुलसी जी आंखें नहीं है तो कान तो हैं, तू सुन करके मेरी बात यहां पर आ जा और खाने की चीज ले ले।
अच्छा तुमने ऐसा कहा, तो वह तुमसे कहता है, बाबूजी देख लो मेरे तो पैर ही नहीं है, मैं पंगु हूं, मैं तो चल नहीं सकता, तब क्या करोगे?
अरे तब तुलसी जी मैं गाड़ी से उतरूंगा, खाने की चीज ले जाऊंगा और कहूंगा, ले भैया बढ़ा, हाथ बढ़ा, ले ले।
अच्छा तुमने तो कहा हाथ बढ़ा और यह जो चादर उसके शरीर पर पड़ी है, अपने शरीर को हिला करके चादर गिरा देता है और दिखा देता है कि उसके हाथ ही नहीं है, वह लूला है, तब तुम क्या करोगे?
अरे तब तो तुलसी जी मैं खिला दूंगा, ले भाई तू बहुत भूखा है, मैं खिला दूंगा, बस बस यही मेरी दीनता का घाट है। मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु आए, कहा तुलसी तुमने पुकारा, लो मैं आ गया, महाराज तुमने ज्ञान के नेत्र तो दिए नहीं, मैं देख तो नहीं पा रहा हूं।
अरे देख नहीं पा रहे हो, ज्ञान के नेत्र नहीं है तो तुम चल करके तो आ सकते हो मेरी बात सुनकर।
महाराज आपने कर्म के पैर कहां दिए?
कर्म के पैर दिए होते तो न चल करके जा सकता आपके पास।
तब फिर प्रभु मेरे पास आए,
ले रे भाई ले, हाथ बढ़ा ले।
मैंने कहा महाराज उपासना के हाथ तो है ही नहीं,
तो मैं बढ़ाऊं तो बढ़ाऊं कैसे?
और तब प्रभु ने गोद में लेकर के मुझे खिला दिया। यह दीनता का घाट है,
जहां पर देखने के लिए नेत्र नहीं, ज्ञान के नेत्र नहीं, कर्म के पैर नहीं, उपासना के हाथ नहीं, यह दीनता का घाट है।
तुलसी ने कहा मैंने बुलाया प्रभु को, तो प्रभु ने कहा क्यों बुलाया?
कहा महाराज क्यों बुलाते हैं आपको? आपने मोह की रस्सी से सबको बांध करके रखा है, त्रिगुण की डोर से जीव को बांध करके रखा है, इसीलिए तो जीव बुलाता है मुक्त कर देने के लिए बंधन से।
वाह तुलसी, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, उपदेश तो बहुत देते हो।
क्या कहा महाराज?
अरे तुम्ही ने लिखा ना, जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काट ही नर ज्ञानी।
सुनो भवानी, शिव जी कह रहे हैं जिसके नाम का जाप करके ज्ञानी नर भव बंधन को काट देता है।
तुमने लिखा है ना?
हमारा लिखा है।
और तुम बंधन को काटने के लिए मुझे बुलाते हो,
महाराज वह तो मैंने ज्ञानी नर के लिए लिखा है ना, आप ही कहते हैं ना भव बंधन काटे नर ज्ञानी, वह तो ज्ञानी नर के लिए है महाराज, ज्ञानी नर बंधन को काटता है, मैं अपने को ज्ञानी तो नहीं मानता इसीलिए आपको बुलाया है।
अच्छा और फिर यह किसने लिखा, भव बंधन ते छूट ही नर जब जाकर नाम, भव बंधन से छूट जाता है नर जिसके नाम का जाप करके, यह तो भक्त के लिए लिखा ना।
हाँ महाराज यह तो भक्त के लिए लिखा, ज्ञानी नर बंधन को काटता है और जो भक्त नर है वह बंधन से छूटता है।
हाँ महाराज यह भक्त के लिए लिखा है, पर मैं अपने को भक्त नहीं मानता महाराज, इसीलिए यह मुझ पर लागू नहीं होता है।
बड़े विचित्र हो तुम, भक्त नहीं मानते अपने को, ज्ञानी नहीं मानते।
कहा महाराज ज्ञानी में भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है महाराज, अपने अहम का विस्तार करना पड़ता है अनंत, ज्ञानी अपने अनंत को फैलाता है अपने अहम को और इस प्रकार बंधन को काट लेता है, और जो भक्त है अपने अहम को छोटा करता है तो उसमें भी परिश्रम लगता है महाराज। अहम को छोटा करो इतना छोटा करो, जैसे ज्ञानी क्या है माया बंधन लेकर के आई ज्ञानी को बांधने, तो ज्ञानी कहता है सो अहम अहम ब्रह्मास्मि, अपने अहम को इतना बढ़ा लिया कि पट से डोर कट गई। और जब भक्त को बांधने आती है गांठ लगाती है कसने लगती है, भक्त कहता है नाहम नाहम, उसने अपने अहम को इतना छोटा कर लिया कि वह गांठ में से फिसल करके निकल आता है। तो महाराज अहम को बढ़ाओ तो भी परिश्रम, और अहम को छोटा करो तो भी परिश्रम, प्रभु मुझसे तो नहीं होगा इसीलिए आपको बुलाया। ठीक है तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम भक्त नहीं हो, अहम को बड़ा नहीं कर सकते छोटा नहीं कर सकते, लो तुम्हारे बंधन को काटे देता हूं। शस्त्र निकाला काटने चले, कहा महाराज रुकिए रुकिए ऐसा नहीं।
अरे क्या मतलब, एक चौथा उपाय भी तो है महाराज।
क्या चौथा उपाय है? है श्रुति विदित तो उपाय सकल सुर कही कही दीन निहोरे, तुलसीदास यह जीव मोह रजु जोई बांध है सोई छोरे।
महाराज यह गांठ तो आपने लगाई है तो जरा रस्सी की गांठ खोल दीजिए ना, उससे भी मैं बंधन मुक्त हो जाऊंगा।
तुलसी बड़े विचित्र हो, काट दूंगा अभी तुम मुक्त हो जाओगे, और गांठ को खोलूं तो यह तो चिज्जड़ ग्रंथि है, जन्म जन्मांतर से उरस्ती गई है, इसमें बड़ा समय लगेगा।
कहा महाराज कृपा कीजिए, आप अगर गांठ को खोल देंगे तो मेरे दो लाभ होंगे।
क्या लाभ होंगे?
पहला लाभ यह होगा महाराज, आप कहते हैं कि बड़ा समय लगेगा तो उतनी देर तक आप मेरे पास बने रहेंगे जब तक गांठ नहीं खुलेगी, यह मेरा पहला लाभ है, और अभी तो काट करके चले जाएंगे, तो यह पहला लाभ। और दूसरा लाभ महाराज, आप गांठ खोल देंगे तो रस्सी साबूत रहेगी, और काट देंगे तो रस्सी खराब हो जाएगी कट करके। तुम्हें मुक्ति चाहिए न रस्सी चाहिए?
कहा महाराज मुझे मुक्ति भी चाहिए और मुझे रस्सी भी चाहिए।
इस चर्चा की पूर्णाहुति करते हैं, यही प्रार्थना करते हुए प्रभु आप सबके जीवन में ऐसा भाव लाए, समर्पण का भाव। हमने कहा भक्ति और कर्म इन दोनों के माध्यम से ध्यान योग और ज्ञान योग यह किसकी परिपूर्णता साधित होती है, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। जो पथ आपके लिए सहज है, भक्ति और कर्म हमारे लिए सहज है, उससे हम प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे हम उसी अंतिम लक्ष्य सिद्ध ज्ञान, उस सिद्ध ज्ञान को प्राप्त करने में प्रभु की कृपा से समर्थ होते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको जो तीन दिन इतनी बड़ी संख्या में आए, इतने समय तक आप यहां पर रहे। भाई लक्ष्मीनिवास जी झुंझुनवाला, उनके प्रति भी मैं हृदय का आभार प्रकट करता हूं। विवेकानंद केंद्र जिन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया, ये सभी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। और एक बार प्रभु के चरणों में मंगल कामना आप सबके लिए करता हुआ वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। हरि ओम सत्सत।
गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तत्क्षिणु, यतः प्रवृत्तेः भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। अर्थात अपने अपने कर्मों में लगे रहकर मनुष्य संसिद्धि को पा लेता है। कैसे पा लेता है यह तू मुझसे सुन। जिस परमात्मा से समस्त चराचर जगत उत्पन्न हुआ है और जिससे यह सारा जगत व्याप्त है, उसकी अपने कर्मों द्वारा पूजा करते हुए मनुष्य सिद्धि को पा लेता है। बड़ी अद्भुत बात कह दी श्री कृष्ण ने। कर्मों से पूजा करने को वे कहते हैं, हमने धूप चंदन फल फूल आदि से ईश्वर की पूजा करने की बात सुनी थी, पर यहां हम एक नई बात सुनते हैं, अपने कर्मों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह कर्मों द्वारा पूजा किस प्रकार होती है, उसका क्या तात्पर्य है? यही कि कर्म किए जाओ पर उसके फल को भगवत समर्पित कर दो। इससे कर्मों में स्वाभाविक रूप से रहने वाले दोष कर्ता को व्याप नहीं पाते। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि चोर चोरी करे और पाप मुक्त होने के लिए सोचे कि मैं इसका फलाफल ईश्वर को समर्पित करता हूँ। दुराचारी व्यक्ति दुष्कर्म करे और ईश्वर समर्पण की आड़ ले ले, नहीं, गीता का तात्पर्य नहीं है। वह अवश्य मनुष्य को कर्मों का फलाफल ईश्वर के चरणों में सौंप देने के लिए कहती है, पर साथ ही यह भी बता देती है कि कर्म के अन्य रूप भी होते हैं जिनसे हमें बचकर चलना पड़ता है। किम कर्म किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभा। कर्मणो हि अपि बोधव्यम् बोधव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस संबंध में तत्वज्ञ मुनि भी ठीक से नहीं कह पाते। इसलिए मैं तेरे सामने कर्म की चर्चा करूंगा जिसके तत्व को जानकर तू अशुभ से तर जाएगा। हे पार्थ, कर्म क्या है यह जान लेना चाहिए। विकर्म और अकर्म किसे कहते हैं यह भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। सचमुच कर्म का रहस्य दुर्बोध सा मालूम पड़ता है। कृष्ण कर्म के तीन रूप बताते हैं, पहला कर्म, दूसरा विकर्म और तीसरा अकर्म। विकर्म विपरीत कर्म को कहते हैं, ऐसे कर्म जो शास्त्र निषिद्ध हैं, जिनको समाज बुरी निगाह से देखता है। अकर्म जड़ता या आलस्य को कहते हैं। कर्म करते समय हमें उसके इन दो रूपों से बचना पड़ता है और जीवन के कर्तव्य कर्मों को करते हुए उनका फलाफल भगवान पर छोड़ देना होता है।